चलिए आगे चलते हैं 11 से 29। टॉपिक लिखिए, वर जियो इला मा उतरिफ तुम फी ही व मसा की निकुम। लौट जाओ उन घरों में जिनमें तुम ऐश कर रहे थे। ये जुमला भी आप सुनेंगे इसमें तर्जमे में, तो फिर इस पे बात होगी। फरमाया वकम कसम न मिन क़रियतिन कानत ज़ालिमा, और बहुत सी बस्तियां हमने तबाह कर दी जो ज़ालिम थीं, और इनके बाद हमने दूसरी कौम को पैदा कर दिया। मुराद ये कि तुम्हें हिसाब किताब की फ़िक्र नहीं, तो डोंट वरी, दूसरों की तरह तुम्हारा भी वजूद ख़त्म हो जाएगा। जब उन्होंने हमारे अज़ाब का एहसास कर लिया तो लगे इससे भागने, तो जवाब मिला, ये है टॉपिक, भाग दौड़ न करो, और जहाँ तुम्हें आसूदगी दी गई थी वहीं वापस लौट जाओ। अब अज़ाबों को देख के घरों से क्यों बाहर जाते हो? कुरान के लिए तो निकल ना सके। याद रखिए, जो कुरान के लिए घर से नहीं निकलता वो अजाब के लिए निकलेगा। अल्लाह न करे घर में सांप निकल आए, छिपकली आ जाए, हम घर छोड़ के बाहर खड़े हो जाएंगे, तो वो कौमें जो इस किताब के लिए हरकत में नहीं आती, फिर अल्लाह उनको अजाब से हरकतों में लाता है। और क्या कहता है, वापस लौटो और अपने मकानात की तरफ जाओ, ताकि तुमसे सवाल तो कर लिया जाए। सवाल तो होगा, सारी ज़िंदगी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अल्लाह ने आपको मुझे सवालनामा देकर भेजा था। कहने लगे, हाय हमारी खराबी, बेशक हम जालिम थे। फिर तो इनका यही कॉल रहा, यहाँ तक कि हमने इन्हें जड़ से कटी हुई खेती और बुझी पड़ी आग की तरह कर दिया। यानी इनके अंदर से ज़िंदगी की आखिरी रमक भी ख़त्म हो गई। तब तक बस वो यही कहते रहे, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। कभी किसी जलजले की झलकियां देखी हैं खबरों में? आपके हमारे इस मुल्क में भी आया था कई साल पहले। कभी सुनामी को देखकर भागते हुए लोग देखे? पीछे पीछे पानी का तूफान होता है और बंदा आगे आगे भाग रहा होता है, उसको सोचिए। ऐसे वक्त में जब इंसान की मौत का वक्त आता है ना, फिर वो भाग दौड़ करता है, निकलता है, लेकिन जब आखिरी हिचकी भी निकल आती है ना, फिर ठंडा होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं, हमने ज़मीन और आसमान और इसके दरमियान की चीज़ों को खेलते हुए नहीं बनाया। ये एमलेस नहीं है, पर्पसलेस नहीं है, बेकार नहीं है। अगर हम यूं ही खेल तमाशे का इरादा करते तो इसे अपने पास से ही बना लेते, अगर हम करने वाले ही होते। बल्कि हम सच को झूठ पर फेंक मारते हैं, पर सच झूठ का सर तोड़ देता है और वो इसी वक्त नाबूद हो जाता है। तुम जो बातें बनाते हो तुम्हारे लिए बायस खराबी हैं। आसमान और ज़मीन में जो है इसी अल्लाह का है, और जो इसके पास है वो इसकी इबादत से ना सरकशी करते हैं और ना थकते हैं। वो दिन रात तस्बीह बयान करते हैं और ज़रा सी भी सुस्ती नहीं करते। क्या इन लोगों ने ज़मीन की मखलूकात में से जिन्हें माबूद बना रखा है वो ज़िंदा कर देते हैं? अगर आसमान और ज़मीन में सिवाए अल्लाह के और भी माबूद होते, सुन लें वो लोग जो अल्लाह के माँ सिवा के साथ उम्मीदें लगाए बैठे हैं। क्या कहा, अगर एक ही जगह दो खुदा होते तो ये दोनों दरहम बरहम हो जाते, ज़मीन आसमान ख़त्म होती। आप कहेंगे कोई कहता है? जी कहते थे, खैर का खुदा अलग है, शर का खुदा अलग है। और ईरानी लोग दो खुदाओं के पुजारी हैं, अहुरमन और यजदा, एक को खैर का रब कहते हैं, एक को शर का। हालांकि आप देखिए, कायनात की कोऑर्डिनेशन से दुनिया चल रही है। ज़मीन से पानी उठता है समंदरों के ऊपर से, और आसमानों में जाकर मुख्तलिफ सूरतों से गुजर कर बारिश बनता है। अगर ज़मीन का खुदा कुछ और कहता, आसमान का कुछ और कहता, तो इस कायनात को बारिश तक ना नसीब होती और सब ख़त्म होता है। एक गाड़ी में दो ड्राइवर बैठ सकते हैं? एक चूल्हे पे दो औरतें खाना पका सकती हैं? दो लोग एक ही हंडिया में चमचा फेर सकते हैं? तो जब तुम्हें नहीं समझ आती ये बात, तो बताओ क्या इस कायनात में अल्लाह ने कोई अपना मददगार रखा हुआ है कि तुम जा जाकर उससे मदद मांगो? नहीं। बस अल्लाह ताला अर्श का रब है, हर उस वसफ से पाक है जो ये मुशरिक बयान करते हैं। वह अपने कामों के लिए किसी के आगे जवाब दे नहीं, और सब उसके आगे जवाब दे। पूछिए खुद से, क्या मैं खुद को अल्लाह के आगे जवाब दे समझती हूँ? क्या इन लोगों ने अल्लाह किसी और माबूद बना रखे हैं? इनसे कह दो, लाओ अपनी दलील पेश करो, ये है मेरे साथ वालों की किताब, और मुझसे अगलों की दलील की बात यह है कि इनमें से अक्सर लोग हक को नहीं मानते। क्या पता चला, इस कायनात में शिर्क की कोई दलील नहीं है। अल्लाह कमज़ोर है जिस मदद कर चाहिए। देखिए, आप और मैं घर के काम करते हैं, फिर थक जाते हैं, किसी और से मदद ले लेते हैं। हम ख़वातीन हैं, कुछ काम कर लेती हैं, कुछ हम नहीं करते, फिर मर्दों से मदद लेते हैं। क्या नऊज़ बिल्ला अल्लाह कमज़ोर है? अल्लाह की कोई लिमिटेशंस है? नहीं। लेकिन बात यह कि इनमें से अक्सर लोग हक को नहीं जानते और इसी वजह से मुंह मोड़े हुए हैं। वजह क्या है? लाइलमी। ये भी बड़ी अच्छी बात है, बहुत सारे मुशरिक लाइलमी की वजह से शायद बच जाएं और हम जैसे लोग पकड़े जाएं जिनके पास कुछ इल्म था और आराम तलब होकर उन तक पहुँचते ही नहीं थे। अल्लाह ताला हम पे हुज्जत हमारे खिलाफ ना करे, हमारे हक में कर दे। तुझसे पहले भी जो रसूल हमने भेजे उनकी तरफ यही वही नाजिल फरमाई कि मेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, बस तुम सब मेरी ही इबादत करो। मुशरिक लोग कहते हैं कि रहमान औलाद वाला है, गलत है, इसकी ज़ात पाक है, बल्कि वो सब के सब इसके बाइज़्ज़त बंदे हैं। किसी बात में अल्लाह पर पेश दस्ती नहीं करते, बल्कि इसके फरमान पर कारबंद हैं। वो इनके आगे पीछे के तमाम उमूर से वाकिफ़ है, वो किसी की भी सिफारिश नहीं करते सिवाय इनके जिनसे अल्लाह खुश हो, और वो खुद हैबत इलाही से लर्जा व तरसा हैं। यानी उन्होंने किसी की सिफारिश क्या करनी है, वो तो खुद कांप रहे हैं। अगर कोई ये कह भी दे कि अल्लाह के सिवा लायक इबादत है कोई, तो हम इसे दोजख की सज़ा देंगे। हम जालिमों को इसी तरह सज़ा देते हैं। पूरे रुकू में किस बात का आपको एहसास हुआ? शिर्क नहीं करना। देखिए, अब हम बड़े हो गए हैं, हम 70वीं सीढ़ी पे आ गए हैं। अब हमें खुल के इस बात को समझना है कि शिर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। आप और मैं अपनी ज़िंदगी में जितना ज़्यादा कुरान का मज़ा लाते रहेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह की तौहीद बढ़ती जाएगी और साथ ही साथ देखिए मौत और आखरत के मरहले आसान होते जाएंगे। फिर इसमें अल्लाह ताला ने कहा कि ज़िंदगी या दुनिया इसके बनाने का एक मकसद है। आप और मैं यहाँ किसी मकसद से आए हैं? बिल्कुल। तो क्या इस दुनिया में इंसान बेमकसद आएगा? आप देखिए कि जिसको पता ही ना हो मैं क्यों आया, मैं किधर जा रहा, मेरा अंजाम क्या है, उससे भी ज़्यादा कोई नासमझ बंदा होगा दुनिया में? नहीं। तो असल बात यह है कि मकसद सामने रख कर जीना है। आप देखिए कि उनके देवी देवियाँ थे। आज भी हिंदू धर्म में इस कायनात के बारे में वो क्या कहते हैं कि ये राम की लीला है। राम कहते हैं अपने जोम में खुदा को, लीला कहते हैं दुनिया को। इनका ख्याल क्या है कि राम ने खेल ही खेल में ये लीला बना ली और राम खेल रहा है। और इनके देवी देवताओं के किस्से आप सुनिए ज़रा, बड़े रंगीले मिजाज हैं, किसी का किसी से अफेयर चल रहा था, किसी से किसी का। और इनका अकीदा क्या है, जिस दिन राम का दिल भर जाएगा वो लात मारेगा, ये दुनिया तबाह हो जाएगी और सब ख़त्म हो जाएगा। कभी ऐसा होता तो कितना मज़ा आता, लेकिन आज मरे कल दूसरा दिन और क्या चाहिए। फिक्र क्या है, एक तारा वाले ना से हिसाब हम वहम फ़ी गफलत मोरदून। तो याद रखिए जो दुनियादार लोग होते हैं ना, उनका मुंतहाए नज़र क्या होता है कि इस दुनिया में सब पालो। दुनियादार और अल्लाह की याद से गाफिल इंसान हमेशा यही समझते रहे कि यह दुनिया बस एक खेल तमाशा, हम जहाँ ऐश व इशरत के लिए पैदा हुए, इसलिए यहाँ हर शख्स को हक हासिल है कि वो जितनी ऐश व इशरत अपने लिए मुहैया कर सकता है कर ले। गोया दुनियादारों का नुक्ता नज़र ये होता है कि अल्लाह ने इस दुनिया को चूँकि कई जगह खेल तमाशा कह दिया है तो ये खेल और तमाशा है, लेकिन असल बात यह है कि वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सिलसिला तो सहीहा की रिवायत है 1060। एक मर्द अल्लाह के नबी सहाबा के साथ बैठे थे, आपने फरमाया, आप ज़रा इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी के दर्द को महसूस कीजिएगा। आपने फरमाया, लोगों जो मैं सुनता हूँ क्या तुम भी सुनते हो? सब ने जवाब दिया कि अल्लाह के नबी हम तो कुछ भी नहीं सुन रहे। आपने फरमाया, मैं आसमानों की चिरचिराहट सुन रहा हूँ, और हक तो यह है कि इसे चिरचिराना ही चाहिए, इसलिए कि इसमें एक बालिश्त इतनी भर जगह ऐसी नहीं जहाँ किसी न किसी फरिश्ते का सर सजदे में ना हो। फरिश्ते मासूम अनिल खता, गुनाहों से पाक, हिसाब से पाक, अगर वो इतनी सजदों में अल्लाह के आगे आजजियाँ करते हैं तो मुझे आपको क्या करने की ज़रूरत है। हमें तो ऐसे लगता है कि हमारे हाथ में सर्टिफिकेट है और पासपोर्ट है और वीज़ा लगा हुआ है हमारा जन्नत का। तो याद रखिए कि फरिश्तों की इबादत के साथ अपने आप को देखिए। अब्दुल्ला बिन हारिस कहते हैं कि मैंने काब अहबार से पूछा, क्या फरिश्तों को तस्बीह करने के सिवा और कोई काम नहीं? अगर है तो फिर दूसरे कामों के साथ हर वक्त की तस्बीह कैसे जारी रहती है? काब ने फरमाया, मेरे भतीजे, क्या तुम्हारा कोई काम तुम्हें सांस लेने से रोकता है? यानी इस वक्त आप सुन रहे हैं ना, तो सर सांस ले रहे हैं ना, घर में जाके खाना बनाएंगे तो सांस लेंगे ना, तो खाना बनाना या यहाँ सुनना सांस लेने से तो नहीं रोक रहा। हकीकत चाहिए कि तस्बीह फरिश्तों के लिए ऐसी है जैसे हमारा सांस लेना या आंख झपकना, कि ये दोनों चीज़ें हर वक्त हर हाल में जारी रहती हैं और किसी काम में रुकावट और मुखिल नहीं होती। तो क्या पता चला फरिश्तों के बारे में? इबादत का ज़ौक रखते हैं। दुआ कीजिए अल्लाह हमें भी ज़ौक दे दे। इबादत से उकताते नहीं, दुआ कीजिए हम भी ना उकताएं। और अपनी इबादत पर तकब्बुर नहीं करते, अल्लाह हमें भी तकब्बुर से बचाए। और हमें तो हर नमाज के बाद की दुआ में दुआ सिखाई गई कि रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक, इसको अपने लिए लाजिम कीजिए, इबादत में खूबसूरती होगी। फिर आप देखिए कि हमने फरिश्तों की शिफात से मुतल्लिक चीज़ें जो देखी हैं, इससे पता चलता है कि अम्बिया और सालेहीन के अलावा फरिश्ते भी सिफारिश करेंगे, और सही हदीस से इसकी तायीद भी होती है। लेकिन ये सिफारिश किन के हक में जाएगी? जिन के लिए अल्लाह पसंद करेगा। और जाहिर बात है कि अल्लाह सिफारिश नाफरमान बंदों के लिए तो नहीं, हाँ गुनाहगारों के लिए, वो लोग जो फरमाबरदार थे लेकिन उनसे कुछ छोटे बड़े गुनाह हुए, अल्लाह उनके लिए पसंद करेगा। तो आपने मैंने क्या सीखा? बेमकसद इंसान को आखरत की फ़िक्र नहीं रहती, मैंने अपना जायज़ा लेना। अल्लाह ने इस कायनात को खेल के तौर पर नहीं बनाया, मैंने इसको संजीदा हकीकत समझना। ज़रा सा बैठ के सोचें, यानी मैं थोड़ा सा अगर मज़ीद सोचवा दूँ तो डर है कि आप बहुत ही ज़्यादा ना पैनिक हो जाएं। लेकिन सोचें हज़रा, मरने के बाद क्या होगा, कहाँ जाएंगे, किधर पलटना मैंने, कभी तो सोचिए। आपको इस पूरी सूरत में मौत, दुआएँ और आजमाइशें साथ साथ दिखेंगी। मेरी ज़िंदगी का मकसद ईमान लाकर नेक आमाल करना है, इस पे गौर व फिक्र करना है। जो अल्लाह की ग़ुलामी से निकला वो जलील और रुसवा होगा। अपनी गलतियों का एतराफ़ करके तौबा करनी है। मैंने अपनी ज़िंदगी के मकसद को सामने रखना है ताकि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। जितना ज़्यादा अल्लाह आपसे राज़ी होगा ना, आप अल्लाह की रज़ा के काम करने लगेंगे। लिख लीजिए, कैसे पता चले कि आपका रब आपसे राज़ी है? तो उसका जवाब क्या है? आपका दिल चाहेगा कि सुबह को भी, शाम को भी, रात को भी, दिन को भी अपने रब को राज़ी करूं, और अल्लाह ताला मेरे आपके लिए ये काम आसान कर दे। आगे देखिए आए 30 से 41, टॉपिक है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और हम तुमको आजमा रहे हैं खैर से भी और शर से भी। ये है वो बड़ी हकीकत जिसकी तरफ ये पारा आपको मुझे लेके जा रहा है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर चीज़ में आज तक इख्तलाफ हुआ, हत्ता के नमाज के तरीके में इख्तलाफ, अल्लाह है कि नहीं इसमें इख्तलाफ, लेकिन एक चीज़ में इख्तलाफ ना मोमिन और फाजिर में, ना काफिर और ना गैर गैर काफिर में, और वो क्या है? मौत। एथियस्ट जो अल्लाह को नहीं मानता वो भी मौत को मानता है, वजह दिन रात तो इसकी दलीलें हैं, हमारे हाथों से लोग चले जाते हैं। लेकिन इंसान को सब की मौत का यकीन आता है, अपनी मौत का यकीन कम ही आता है। अल्लाह हमें इसका यकीन दिला दे। कायनात पे गौर व फिक्र करवाया जा रहा है। अवलम यरल्लज़ीन कफरू अन्नस्समावाति वल-अर्ध कानत रत्क़ा, क्या ये लोग जिन्होंने नबी की बात मानने से इनकार कर दिया गौर नहीं करते कि ये सब आसमान और ज़मीन बाहम मिले हुए थे, फिर हमने इनको जुदा किया और पानी से हर जिंदा चीज़ पैदा की, और वो हमारी खल्लाकी को नहीं मानते? पहली बात तो इसमें ये नोट कीजिए कि हम सब की असल पानी है। पानी जितना ज़्यादा आपकी मेरी ज़िंदगी में अहम है, उतना ही ये वही इलाही का पानी भी अहम है। लिख लें, आप कहते हैं कि इंसान खाने के बग़ैर ज़िंदा रह सकता है काफ़ी दिन, पानी के बग़ैर बहुत ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रह सकता। तो आप और मैं इस वही इलाही के पानी के बग़ैर आज तक ज़िंदा थे, बट मुरझाए हुए थे, कुमलाए हुए थे, बासी थे। अब आप अगर नियत कर लेना आज से, रोज़ ही कहती हूँ, किसी दिन कोई करेगा किसी दिन कोई, कि अल्लाह जिस तरह इस रमज़ान में रोज़ अपने आप को एक पारे का पानी दिलवाती हूँ ना, ये वही इलाही का पानी है ना, अब मैंने अगले साल में भी रमज़ान से पहले पहले तक इस कुरान को छोड़ना नहीं है। हमने रस्मी नेकियां नहीं करनी, फिर क्या होगा? इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। फरमाया, क्या ये वो लोग जिन्होंने नबी की बात मानने से इनकार किया, उनको क्या कहा? کہ پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی گئی، کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ مخلوق کو ہلا نہ سکے، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دیں تاکہ وہ راستہ حاصل کریں۔ آسمان کو مضبوط چھت بھی ہم ہی نے بنایا، لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان نہیں دھرتے۔ گلہ ہے اللہ کو آپ سے مجھ سے، کائنات پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ بادلوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ سورج کو کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ کہیں گے ٹائم ہی نہیں ملتا، فرصت ہی کوئی نہیں، بزی بڑے ہیں۔ ہم نے اپنے ارد گرد اتنے کام بنا لیے اور اتنے گیجٹ لگا لیے کہ ہمیں واقعی وقت نہیں ملتا، تو غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہاں سے یہ سیکھنے کی بات ہے، وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیش کی نہیں دی۔ رکیے، ہائی لائٹ کیجیے، اللہ تعالیٰ یہ جملہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہر بندہ کان کھول کر سن لے اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ اگر دنیا میں آ کر کسی کو ہمیشہ کی زندگی دی جاتی تو وہ کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ ضرورت ان کی تھی۔ کبھی ایسا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اب ہمیں نبی کی ضرورت نہیں رہی؟ لیکن ان کو بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں ملی۔ کیا اگر آپ مر گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ حقیقت کیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور ہم امتحان کے طور پر تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ منکرین تجھے جب دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق ہی اڑاتے ہیں، کیا یہی ہے وہ جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے اور وہ خود ہی رحمان کی یاد کے بالکل منکر ہیں؟ انسان جلد باز مخلوق ہے، میں تمہیں اپنی نشانیاں بھی ابھی دکھاؤں گا، تم مجھ سے جلد بازی نہ کرو۔ کہتے ہیں اگر سچے ہو تو بتا دو کہ یہ وعدہ کب ہے؟ کاش یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ کافر آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے، اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ خلق الانسان عجولا، عجل میں پیدا کیا گیا انسان بڑا ہی جلد باز ہے، ایک بات کی بڑی جلدی مچاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ قیامت کب آئے گی؟ تو فرمایا ہاں ہاں، وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی اور انہیں ہکا بکا کر دے گی، پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہ ذرا سی بھی مہلت دیے جائیں گے۔ اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کیا گیا، بس ہنسی کرنے والوں کو ہی اس چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے 295، آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ راوی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا جی خوش ہو جاتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ کیا خوش نصیب تھے صحابہ کرام، کتنے تھکے مارے ماندے کھیتوں میں کام کیے ہوئے مزدوریاں کر کے مسجد نبی کے دروازے میں آتے ہوں گے، اور آگے اللہ کے نبی کا پیارا سا چمکتا ہوا تر و تازہ چہرہ۔ آپ کو دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت حسین تھے، ایک رات چاندنی رات میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عائشہ کہتی کہ اللہ کے نبی نے سرخ رنگ کی چادر لی ہوئی تھی، اور میں کبھی چاند کو دیکھتی تو کبھی آپ کو دیکھتی کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے کہ آپ، اور پھر میں یہ مان گئی کہ اللہ کے نبی کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بدر الدجا، اتنے پیارے نبی کو دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تمام چیزوں کی اصلیت سے خبردار کر دیں۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ، تمام چیزیں پانی سے پیدا کی گئی ہیں، یعنی یہ سیکھنے کا ایک انداز تھا ابو ہریرہ کا، قریب رہتے تھے تو ایسا ہی تھا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس رکوع میں موت کا بہت ذکر آیا، الینا ترجعون، موت کا ایک ذائقہ ہے اور ایک میٹھا اور ایک کڑوا، دو ذائقے ہیں موت کے، ایک کڑوا اور ایک میٹھا، اور کل نفس ذائقہ، تو اگر اللہ ذائقہ دیکھے نا تو فائل ہے، یہ چکھنے والی ہے موت کو۔ لفظ موت سے کیا ہمارے دل میں آنا چاہیے؟ پریشانی، گھبراہٹ؟ نہیں، صحابہ کرام تو موت کے لفظ کو ایسے سنتے تھے جیسے شادی کے لفظ پہ کسی کی آنکھوں میں چمک آ جائے۔ کیوں؟ کہ ان کو پتا تھا کہ اس موت سے گزر کر ہی تو اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ دیکھیں، مومن کی دو خواہشات ہوتی ہیں، جنت اور اللہ کے چہرے کا دیدار، اور اللہ نے یہ بات لکھ لی کہ یہ دونوں چیزیں موت کے دروازے سے گزرے بغیر نہیں ملیں گی۔ تو موت سے ڈریے نہیں، موت کی تیاری کیجیے۔ جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں گے ہمیں اپنی موت اتنی پیاری لگے گی. انتظار ہوگا آپ کو, غم تو ہوگا. ایک صحابی تھے موت کے وقت پہ, اللہ کے نبی نے پوچھا سناؤ ساتھی کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی اپنے گناہوں سے بڑا ڈر لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا, اور ساتھ ہی دوسری طرف شوق بھی بڑا آ رہا ہے کہ اللہ کو ملنا ہے. اتنے دنوں کا اداس ہوں, اتنی لمبی جدائی ہے میری میرے مالک سے. بندہ مومن ہر وقت اللہ کو ڈھونڈتا ہے, کبھی نمازوں کے سجدوں میں اور کبھی رکوع اور قیام میں, اور کبھی اس کے بندوں سے اچھے معاملے کر کے, اور چپکے سے کہتا ہے اللہ جی آپ راضی ہیں, اللہ جی آپ خوش ہو جائیں. کسی سے اگر آپ نے سچی محبت کی ہو تو آپ اس کو محسوس کرتے ہوں گے. ایک نظر دیکھنا ہے. جیسے کسی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کب آنا ہے, تو جس سے کی بات اس نے کب آنے کی کیا ضرورت ہے, اسکائپ پہ دیکھ لیں, واٹس ایپ کی ویڈیو کال پہ دیکھ لیں. تو ماں نے کیا کہا, کہتی اس سے ٹھنڈ تو نہیں بڑھتی نا جو تجھے گلے لگا کے ٹھنڈ پڑے گی. آج آپ دیکھیے گھر بیٹھے آپ کیمروں کے ذریعے سات سمندر پار والوں کو دیکھ لیں, لیکن ٹھنڈ کب پڑتی ہے؟ جب آ کر اپنے پیارے کے گلے لگتے ہیں. ہم دور دور سے اللہ کو دیکھ رہے ہیں آج بھی کاننا کا طرح ہو, لیکن اس دن سینہ ٹھنڈک سے بھر جائے گا جس دن اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہوگا. اس کے لیے تیاری کرنی ہے, اس کے لیے کوشش کرنی ہے. جتنا زیادہ اللہ سے قرب بڑھتا جائے گا موت کا ذائقہ میٹھے سے میٹھا ہوتا جائے گا, اور جتنا دور ہیں زندگی میں قرآن کا مزہ چکھ لیں موت کا مزہ کڑوا نہیں رہے گا, موت کی کڑواہٹ کم ہوگی. اور جن کی زندگی گناہوں والی کڑواہٹ والی میں ہوتی ہے نا, ان کی موت بڑی کڑوی ہوتی ہے. اللہ کے نبی کی بہت ساری حدیثیں ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہماری موت کا وقت ہم پر آسان کر دے اور اس کے لیے تیاری کرنے والا بنا دے. کیا سیکھا؟ کائنات کی نشانیوں پہ غور کرنا, اللہ تعالیٰ اچھے اور برے حالات سے آزماتا ہے, صابر رہنا, ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, اپنے یا اپنے کسی پیارے کی موت پہ گھبرا نہیں جانا. کیا میں رحمان کے ذکر سے غافل تو نہیں؟ میں دیندار لوگوں کا مذاق تو نہیں اڑاتی؟ اللہ کے بنائے ہوئے نظام پہ غور و فکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے.